पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मदेक बंधु मत्संगी मद्गुरु मद महांधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधुता दाहि नाति नीचो ततारक हानुमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरः। सदिष्णानाम एक देशे मनसा प्राणधारणम वैकुंठ लीलाभिध्यानम समाधानम तथात्मन। सर्वप्रथम उपस्थित समस्त भक्तों की कृपा आशीर्वाद की याचना करते हुए भगवान कपिल के इन वचनों को समझने का प्रयास करेंगे। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की, श्री गौर निताय की जय। लगभग इस श्लोक के विषय में श्रवण हम इसके पूर्व कक्षा में भी किए थे श्रीमान श्री गोविंद प्रभु जी मुखारविंद से, परंतु फिर भी मन में विचार था कुछ लगभग यहाँ 7-8 श्लोकों में जहां से प्रारंभ हुआ था यह अध्याय योगे न कहेंगे, योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सभी जस्य नृपात्मजे मनो येन एव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। पुनः पुनः इस प्रथम श्लोक से लगभग 8 श्लोक का जो क्रम है या संपूर्ण अध्याय है, अष्टांग योग का वर्णन किया गया। परंतु अष्टांग योग में प्रमुख रूप से जिस शब्द पर केंद्रित है समस्त उपदेश भगवान कपिल देव के, योगस्य लक्षणम वक्ष्ये, भगवान कपिल देव माता देवहूति को प्रथम सांख्य योग 26 अध्याय, ज्ञान मार्ग का पद्धति का वर्णन 27 अध्याय, और अष्टांग योग आदि का वर्णन 28 अध्याय में। परंतु श्रील प्रभुपाद समस्त अध्याय का सार रूप में भक्ति की शिक्षा को प्रकट किए हैं, तो उस दृष्टि से हम यहां पर देखेंगे योगस्य लक्षणम वक्षे, ऐसी प्रक्रिया का वर्णन भगवान कपिल देव कर रहे हैं। मनसा ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम, कि जिस विधि से जिस प्रक्रिया को हम जीवन में अभ्यास करें तो मन दो प्रकार की अवस्था को प्राप्त होता है। प्रसन्नम, मन सदैव, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षति, मतलब बाह्य किसी भी परिस्थिति का, बाह्य किसी अवस्था का, यहां तक कि देह की भी प्रतिकूलताओं का प्रभाव जब न हो, उस अवस्था को मन जब प्राप्त हो जाए, जिसको प्रसन्न मन कहा गया यहां पर, और याति सत्पथम, और सहज फिर भगवान की ओर मन जब प्रवाहित होने लगे, तो उसी के लिए अलग अलग लक्षण लगभग दूसरे श्लोक से हम प्रारंभ किए थे कि किस तरह, जैसे यह दृष्टांत सदैव दिया भी जाता है कि कोई व्यक्ति अपने मुख में यदि नीम के पत्तों का चर्वण करता है, नीम के पत्तों को चबाता है, नीम के पत्ते यदि मुख में रखता है, और फिर उस व्यक्ति को कहा जाए कि आप मिश्री की मिठास का अनुभव बतलाइए, तो जिसके मुख में नीम के पत्ते हैं वह मिश्री की मिठास का अनुभव कर नहीं सकता जब तक वह कड़वाहट न निकल जाए मुख से। तो क्या प्रक्रिया है? तो पहले जिस तरह से यहां पर भी बताया उन्होंने, ग्राम्य धर्म निवृत्ति मोक्ष धर्मी रति तथा, नीम के पत्तों की कड़वाहट मुंह में है, क्योंकि नीम के पत्ते मुख में है इसलिए मिश्री की मिठास का अनुभव नहीं हो रहा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नीम के पत्तों को मुख से थूक देना होगा, पहला बात। फिर मुख प्रक्षालन आदि करना होगा। इतना होने के पश्चात भी कड़वाहट कुछ समय तक बनी रहती है तो तीसरी बात के धैर्य रखना होगा, क्योंकि तुरंत वो कड़वाहट निकलती नहीं है। और निरंतर फिर भले ही अनुभव न हो मिठास का, परंतु फिर भी तीन बातें बतलाई जाती है निरंतरम, क्या है, दीर्घ कालम सत्कारार्थम। साधन सिद्ध कब होता है? तो साधन को सिद्ध करने के लिए तीन वहां पर अंग बतलाए गए। कोई भी साधन, चाहे आप नाम को सिद्ध करना चाहते हैं, भगवान की किसी भी सेवा को सिद्ध करें, जो साध्य को प्रकट, साधन का सिद्ध होना मतलब साध्य जब प्रकट होने लगे, जैसे मंत्र को सिद्ध करना, दो दिन पहले महाराज श्री कह रहे थे मंत्र सिद्ध होना मतलब जो मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम, जिसको भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है, जो मंत्र मूर्ति है, मंत्र का जो रूप है, नाम से जब रूप प्रकट होने लगता है उसे मंत्र को सिद्ध करना कहा गया। तो उसके लिए तीन अंग जो बतलाए जाते हैं शास्त्र में कि कोई भी साधन कब सिद्ध होता है, तो पहले कहा गया, सबसे प्रथम कहा गया निरंतर किया जाए उसे, अखंडित रूप से, खंड न हो उसमें, या जिसे शास्त्र के शब्दों में अव्याहृत या अविश्रांत, यह दो शब्द प्रयोग किए, अव्याहृत भजन कहा जाता है या अविश्रांत नाम लोए, जिसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहे। विश्रांत मतलब विश्राम करना, मतलब रुकना। परंतु जब तक साध्य प्राप्त न हो तब तक उसको यदि न रोका जाए तो उसको अविश्रांत कहा जाता है, अव्याहृत कहते हैं। जब अव्याहृत की परिभाषा बतलाएगी, जैसे मान ली 24 घंटे है दिन के, तो 24 घंटे में अव्याहृत नाम जप, जिसको किसको कहा जाता है अव्याहृत नाम जप, तो वहां पर अव्याहृत नाम जप अर्थात 24 घंटे में आपका मुख कम से कम बिना रुके 12 घंटे तक यदि नाम का अभ्यास करता है तब उसे अव्याहृत कहा जाता है। क्योंकि अनुभव भी है हमारे इस जगत में, इस संसारिक कार्यों में भी आप देखेंगे, आप एक कार्य को बहुत अधिक समय तक जब करने लगते हैं, जैसे संसार में कोई व्यक्ति व्यापार करता है, अपनी दुकान आदि देखता है, आप देखिए सुबह से शाम तक वो पूरी तरह से एकदम डूबा रहता है उस व्यापार में। उसका परिणाम क्या होता है कि सुबह से शाम तक एक कार्य को करते रहेगा तो परिणाम ये होता है कि जब वो व्यापार करके जब घर भी लौट के आते हैं तो मन में फिर भी वही चिंतन चलने लगते हैं। तो कोई भी विषय लगभग 8-10-12 घंटे शास्त्र कहता है, भक्ति ठाकुर से तीन विभाजन कर दिया, 8-8-8, 8 शरीर, 8 साधन के लिए और 8 परोपकार आदि संसार के परोपकार के लिए, सत्कार्य के लिए। तो वहां पर कम से 8 तो बताया गया, वैसे शास्त्र 12 घंटे कह रहे हैं अव्याहृत का जो परिभाषा है उसमें। इतना जब आप निरंतर किसी कार्य करते तो इसीलिए वहां पर शब्द है दीर्घ काल, बहुत दीर्घ काल तक आप जब करते रहते हैं, जैसे नाम जब का भी अनुभव है कि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, जब करे तो सहज मन का स्वभाव होता है कि मन तुरंत लय या विक्षेप को प्राप्त होता है। मतलब एक तो पहला प्रभाव होता है कि तुरंत मन निद्रा अवस्था में लेकर जाता है शरीर को, अनुभव है अधिकतर। आध्यात्मिक शब्द जैसे आप सुनेंगे, मन के अंदर जब कषाय होता है, जिसको भगवान नारद मुनि से कहे अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो कुयोगिनाम, भक्ति में जब परिपक्वता नहीं आती है, साक्षात्कार जब न हो, परिपक्वता का अर्थ यह भी है, और कषाय जब हो, कलमश हो, तो तुरंत मन पकड़ नहीं पाता है नाम रूप गुण लीलाओं को, तो निद्रा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। बहुत अधिक रजोगुण जब हो, बहुत अधिक तमोगुण रहेगा, तो तमोगुण का प्रभाव क्या होता है, तमोगुण का पहला प्रभाव होगा जिसके तमोगुण बहुत अधिक है, प्रधानता तमोगुण की जिसकी है, उसका तुरंत आप प्रभाव देखते कि तुरंत नींद आएंगी, जैसे भगवान का नाम जप हुआ, जैसे भगवान की कथा हुई। रजोगुण का प्रभाव रहेगा तो लय, फिर दूसरा विक्षेप। रजोगुण के प्रभाव का परिणाम होगा कि जैसे ही भगवत कथा भगवान का नाम हुआ, भगवान में मन को केंद्रित करने का जैसे अभ्यास कोई किया जाए, तुरंत मन जो है संसारिक विषय की ओर बहुत तीव्रता से दौड़ता है और चंचलता अधिक रहती है उसमें। और सतोगुण का भी प्रभाव जब रहता है आध्यात्मिक क्रिया में, तो उसको औदासीन्य कहा गया। औदासीन्य मतलब मन आप सो भी नहीं रहे, आप देखेंगे। दूसरा है आपका मन कहीं भाग भी नहीं रहा है, परंतु फिर भी अनुराग और अभी आकर्षण नहीं है भगवान के प्रति, या वो आध्यात्मिक क्रिया जो है थोड़ी बोझिल हो जाती है, उसको औदासीन्य कहते हैं। तो यह जो पूरे अभी श्लोक पर कहना पड़ेगा, मैं और कुछ कहने लगूंगा तो श्लोक प्रारंभ ही नहीं होगा। तो उसी बात को यहां पर भगवान कपिल देव लगभग जो बताए कौन कौन सी क्रिया है, तो पहला है कि ग्राम्य धर्म निवृत्ति मोक्ष धर्म रति, कि पहले नीम के पत्ते को मुख से निकाल दिया जाए, और फिर मोक्ष धर्मी रति तथा मोक्ष धर्मी रति अर्थात जो भगवत भक्ति के जो अंग हैं उसको अच्छी तरह से किया जाए सुदृढ़तापूर्वक, मतलब तो अव्याहृत का ही मैं जब व्याख्या कर रहा था तो दीर्घ काल कहा गया, दीर्घ काल तक करना होगा उसको, और दूसरा निरंतर, और तीसरा सत्कारार्थ, सत्कार मतलब बहुत आदर और श्रद्धा के साथ। साधन में यदि श्रद्धा न हो तो साधन सिद्ध नहीं होता है। कारण आप नाम जप कर रहे हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य में कहते हैं नाम जप का फल तब तक अनुभव नहीं होता है जब तक आप यह धारणा साथ में लेकर न बैठे कि अभिन्नत्वा नाम नामिनो। कहने के लिए हम सदैव कह लेते हैं, श्लोक भी मार लेंगे, इस्कॉन वाले की विशेषता के परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं इस्कॉन में आप कुछ दिन रह लीजिए, श्लोक बोलना प्रवचन देना ये बाएं हाथ का खेल हो जाता है। इस्कॉन वाले को आधी रात को उठाओ और बोलो कि प्रवचन दो। वहां पर वो भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं उनके ऐसे ऐसे बॉक्स रखते थे, वो बॉक्स में कार्ड होते हैं जैसे एक पत्तों का जैसे, तो कार्ड्स रखे रहते थे। उन्होंने लगभग इतने 500-100-200 विषय बना के रखे थे, कोई भी विषय, ये विषय हरिनाम बोलो तो हरिनाम के एक घंटे का प्रवचन तैयार है, फिर कुछ भी कहो साधु संत तो साधु संत प्रवचन। ज्ञान बहुत अधिक होता है परंतु जिसको कहा जाए कहत सुनत हृदय दशा नहीं आवे, कहना एक बात है और अनुभव होना अलग बात है। और जब अनुभव साक्षात्कार के साथ जब उसको कहा जाता है तो प्रभाव अलग होता है। कि दो प्रकार के प्रचार होते हैं जैसा अनुभव किया जाए संसार में भी, एक होता है प्रभाव से प्रचार होना और दूसरा है कि थोपना, जिसको कहा जा सकता है क्योंकि आप दूसरों को कहे कि हरिनाम लीजिए हरिनाम लीजिए, तो वह एक होता है, परंतु दूसरा होता है कि आप के भक्ति में इस प्रकार का प्रभाव हो जाए जैसे श्रील प्रभुपाद कहते पवित्रता ही शक्ति है कि सहज जिसको जहार दर्शन मुख्य आई से कृष्ण नाम, जिसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतामृत में कहे कि क्या एक जो बहुत अच्छी तरह से नाम जप करे उसका प्रभाव क्या होता है, जहार दर्शन मुख्य आई से कृष्ण नाम, कि उस व्यक्ति की उपस्थिति ही नाम को उदित कर देती है, व्यक्ति का प्रभाव ऐसा होता है। तो इसीलिए यहां पर कुछ इन लक्षणों को बताया गया कि किस तरह से मनसा ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पतम, कि मन प्रसन्न रहे और सहज उस मार्ग में प्रवाहित होने लगे। तो लगभग यह 2 से 8 तक जो श्लोक है भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण भी है, लगभग प्रत्येक श्लोक ही है, प्रत्येक श्लोक के द्वारा भी आप बोध को ग्रहण कर सकते हैं। परंतु परम गुरु से कुछ विशेष गुणों को बतलाया गया है कि हमारे भक्ति में जीवन में कुछ ऐसे गुण होने चाहिए, क्योंकि हम भी भगवत भक्ति का अभ्यास करते हैं वास्तविक, जैसे आज प्रातःकाल महाराष्ट्र भी कह रहे थे इस बात को, महाराज ने कहा कि कई भक्त कह रहे कि गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए, हर कोई अपना मैसेज लिखते रहता है आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, जैसे आशीर्वाद तो कोई बाजार से भाजीपाला ही है, ऐसा सब्जी उठाई और दे दी आशीर्वाद मिल गया। परंतु महाराज ने बहुत अच्छी तरह से बताया वास्तविक आशीर्वाद यही है कि आप भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, आप नाम जप में लगे हुए हैं, यही भगवान समस्त आचार्य गुरु की कृपा का लक्षण है। क्योंकि जब तक गुरु आचार्य की कृपा न हो तो अनुभव यह होता है, जैसे उस दिन भी हम इस बात का वर्णन कर रहे थे पूर्व कक्षा में, गुरुर अवज्ञा पर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो अपना टिप्पणी दी है कि किस तरह से गुरु अवज्ञा नाम जप को नष्ट करवाती है, तो उसमें क्रमशः जो क्रम बतलाया गया था तो वहां पर इस बात को बतलाया गया कि यदि गुरु वैष्णव की कृपा से जीवन विहीन हो जाए, गुरु साधु वैष्णव की कृपा न हो, तो उसका पहला परिणाम तुरंत यह होगा कि आपका नाम जप छूट जाता है। नाम जप का अभ्यास बहुत कठिन होने लगता है, अब सब अनुभव लगभग प्रतिबद्ध किया है कि जैसे ही आपका हृदय किसी साधु वैष्णव गुरु के दोष को यदि पकड़ने लगे, दोष दिखने लगे, जो नियमित रूप से प्रामाणिक साधना करते वो अनुभव करेंगे, जिनकी साधना में अभी तो पकड़ नहीं आई है नाम जब उतना नियमित नहीं है वो शायद उतना अनुभव न कर पाए, जब तुझे नाम जब नियमित करने का अनुभव होगा कि जैसे ही हृदय आपका दोष चिंतन, दोष दर्शन, दोष श्रवण, दोष कीर्तन, चार बतलाए गए। एक तो दोष दर्शन, दोष दिखाई देने लगे। वैष्णव में दोष दिखाई देना यह हृदय के अशुद्धि का एक लक्षण बतलाया गया, क्योंकि हृदय पवित्र हो तो वैष्णवीर निंद कर्म ना पड़ी हो काने। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में कहा गया कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दोष दिखते ही नहीं थे, जो क्या है वो, जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे मन का प्यारा है। एक भजन होता है उसमें कहते हैं, एक भक्त होता है श्री कृष्ण से कहते हैं वास्तविक आपका जो प्रिय है, जो आपसे प्रेम कर रहा है, जो भगवान के शरण में आए, जो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, ये सबसे बड़ा सिद्धि है। तो उसमें जब भगवान दोष नहीं देख रहे, भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता में चेत भी दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य, समंतव्य मेरी मान्यता है, शास्त्र का उद्धरण नहीं दे रहे, भगवान श्री कृष्ण मेरी मान्यता, मैं मानता हूं साधु एव सह, एव मतलब निसंदेह, कोई भी चीज को बहुत जोर देना हो, हरेर नाम एव, हरेर नाम एव, नाम एव जो कहा है, एव मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्टनली, ही यही है, तो इसलिए एव शब्द प्रयोग। तो भगवान भी इसके साधु कह दे चल जाता, साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो सर, अपि सुदुराचार, इतना अधिक भगवान ने कह दिया, दुराचार कहते तो चल जाता, जिसका आचरण शास्त्र विरुद्ध हो उसको दुराचार कहा जाता है, परंतु सुदुराचार कहा गया, मतलब जिसको कहा जाए कि जो बहुत अधिक ऐसे दुष्कृत्य में लगा हुआ है, परंतु वहां भी यदि अखंडित रूप से भगवान का आश्रय लिया है उसने, अखंडित रूप से भगवत सेवा में साधना आदि में लगा हुआ है, तो भगवान उसे साधु मान रहे, मतलब इसका दूसरा भाव यह बतला कि भगवान को भी दोष दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जिनमें भगवान को दोष न दिखाई दे उनमें अगर हमको दोष दिख रहे हैं, यह अशुद्धि का लक्षण है। तो मैं कहां से कहां अभी विषय किस लिए चले गए थे इसमें, हाँ 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 ना, अच्छा हाँ, सुबह महाराज जी का जो जूम जपा का बात कह रहा था कि यदि गुरु साधु वैष्णव की कृपा ना हो तो आप दोषों को ग्रहण करने लगते, स्वयं में गुण दर्शन होता है और दूसरों में दोष दर्शन होता है, और ये दो तुरंत आध्यात्मिक क्रिया को रोक देता है। आध्यात्मिक क्रिया रोकती नहीं है, आध्यात्मिक क्रिया पूर्ण शून्य हो जाती है। खली में बहुत सुंदर कथा, ययाति महाराज की जो प्रसिद्ध कथा बतलाई जाती है, महाभारत में वर्णन आया कि ययाति महाराज इतने अधिक सुकृत अर्जित कर लिए, इतना पुण्य अर्जित हुआ, इतना पुण्य अर्जित हो गया कि इसी देह से वह स्वर्ग में पहुंच गए। और स्वर्ग में कोई अगर बिना परमिशन के, बिना वीजा के आ जाता है तो फिर इंद्र को थोड़ा एकदम टेंशन आ जाता है। तो इंद्र जो विचार करने लगे, और इतना अधिक पुण्य था कि देवताओं से उच्च उनको पुण्य बढ़ गया था ययाति महाराज का। ययाति महाराज का सुकृत स्वर्ग के देवताओं से अधिक हो गया, ऐसा बतलाया गया। और वे ययाति महाराज स्वर्ग में पहुंच गए, जैसे स्वर्ग पहुंच गए तब देवराज इंद्र विचार करने लगे क्या किया जाए, ऐसा कुछ इंस्टेंट काम किया जाए कि इनका पुण्य पूरा नलीफाई कर दे, मतलब पूरा की कराए पे चौपट पानी फिर जाए, ऐसा कुछ किया जाए। तो वहां वर्णन है कि इंद्रदेव ययाति महाराज का स्वागत किए, तो कहे कि स्वागत है, आइए आपका स्वागत है, और सुना है कि आपने को तो काफी पुण्य किए, हमें पता नहीं है क्या आप बतलाएंगे। तो वहां कहते कि ययाति महाराज ने अपने मुख से कहा तब कि आज तक संसार में इतना सुकृत किसी ने नहीं किया होगा जितना सुकृत मैंने किया है। तो वहां पर बतलाया जाता है जैसे ये वाक्य किया कहा तो तुरंत देवराज इंद्र का आपने बहुत बड़ा अपराध हो गया आपसे, क्योंकि इस संसार में कई बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, कई संत हुए, कई महात्मा हुए जिन्होंने भगवान के कृपा को प्राप्त किया है, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सारे पुण्य किए, और आपने ऐसा वाक्य कह दिया कि मैंने जितना महत्व सुकृत किया इतना किसी ने किया ही नहीं। आपने जैसे अपने मुख से, और उसका परिणाम क्या हुआ, जैसे मुख से आप अपना गुण कहते हैं, जैसे आपने अपने मुख से मैंने किया, अमरावती में प्रचार किसने किया ये बकरी का जो मैं है ना, जो मैं हम जैसे बोल देते हैं किसी वाक्य, मैं इस कार्य को किया, ये जैसे कहा जाए तो कह जाते कि उसके पूर्व के जितने पुण्य समस्त पुण्य क्षय हो जाते हैं। मुख से गुण अपना अगर कह दिया जाए, ये बहुत बड़ा पाप कहा गया इसको शास्त्रीय आध्यात्मिक दृष्टि से। ये पाप है कि जैसे अपने मुख से आप अपनी अगर कुछ कुछ बखान कह देते, मैं किया प्रभु जी, ये मैंने किया, मैंने जप किया, ऐसा अगर आप कहे तो उसका परिणाम होता है कि पुण्य क्षय हो जाते। वहां वर्णन है कि स्वर्ग में पहुंचे ययाति महाराज ने अपने मुख से जैसे ही अपने ऊपर कहा कि मैंने इतने सुकृत किए जिसके फलस्वरूप मैं यहां पर स्वर्ग में आया, उसी क्षण उनके पुण्य पूरे के पूरे ले लिए गए और मुंह के बल वहां स्वर्ग से नीचे गिरने लगे हैं। तो वर्णन किया गया कि वो जैसे ही जा रहे थे तो फिर इंद्र से उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पुण्य सब चले गए, क्या मेरी एक इच्छा पूरी हो सकती है? यहां पर आए आप कुछ एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? बोले ठीक है, अभी तुम्हारा अधोपतन होने वाला है, कहो क्या कहे। तो उन्होंने बहुत सुंदर ट्रिक उनको सूझी, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं गिर तो रहा हूं सर के बल गिरने वालों, परंतु जहां पर साधु संत हो, जहां पर महात्मा गण हो, वहीं पर मैं गिरूं, यह मुझे आशीर्वाद दी। तो वहां वर्णन आते जैसे गिर रहे थे, वो महाभारत में दिया है, चार और नीचे आने लगे, जैसे सर के बल नीचे आ रहे थे तो वहां बतला जाता कि चार संत महात्मा थे जहां पर गिर रहे थे। तो जैसे गिरने आते चार, उसमें एक शिवी महाराज थे और तीन वैष्णव का भी नाम है, चारों ने देखा कि कोई आ रहा है सर के बल आ रहा है, मतलब निश्चित रूप से कुछ स्वर्ग में से अधोपतन हुआ है, तब सर के बल वो व्यक्ति गिरता है। तो उसी क्षण उनको दया आ गई, साधु का जो प्रथम उदय थे जिसको क्या कहते हैं पर दुखे दुखी, अन्य के प्रति उनमें उनके दुखों को कष्ट को देख के हृदय द्रवित होने लगता है। तो तुरंत शिव महाराज और उन अन्यों ने देखा कि अरे नीचे की ओर आ रहा है, मतलब इसका पुण्य क्षीण हो चुका है, तो बहुत बुरा हुआ, बेचारे सर के बल गिर रहा है। तो तुरंत उसमें से एक साधु ने कहा कि पता नहीं क्या इससे गलती हुई है, क्या अपराध हुआ है, तो जो भी है मैं अपना पूरा पुण्य इसको देता हूं, मेरा जितना सुकृत है। जैसे ही ये शब्द निकला शिव महाराज के मुख से, उसी क्षण वहां पर तुरंत विमान प्रकट हो गया और जो उल्टे थे वो सीधे हो गए और विमान में बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि मुझसे ये अपराध हुआ था, इसलिए मैं ऐसे जा रहा था, तो मेरा पुण्य सब चला जा चुका है, माइनस हो गया। तो चारों ने कहा हम अपना पूरा दे देते तुमको पुण्य। तो जैसे ही चारों ने कहा हम अपना देते, उसी क्षण बतलाया जाता है जो स्वर्ग में से नीचे की ओर आ रहा था तुरंत ब्रह्म लोक तक पहुंच गए, स्वर्ग से भी ऊपर उनका प्रमोशन हो गया। तो कहने का भाव ये कि साधु गुरु वैष्णव की कृपा हो तो तुरंत भक्ति मार्ग आपको प्राप्त हो जाता है, और उस जैसी अवज्ञा हो तो जो भक्ति के साधन है वह भी आपको बोझिल हो जाते हैं। तो मुझे महाराज श्री भी जो जिस बात को कह रहे थे कि हम जो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, जो भी भक्ति अंगों का पालन करते हैं, सबसे पहले निश्चित रूप से किसी न किसी साधु गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन में रहता है, जिसका फल है कि प्रत्येक क्रिया करते। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में 15वां अध्याय है, भगवान श्री कृष्ण जब इस धरातल से चले गए तब युधिष्ठिर महाराज जिज्ञासा की अर्जुन से कि तुम इतने, तुम्हारा तेज क्यों चला गया, तुम्हारा बल कहाँ चला गया। उस समय अर्जुन कहे भी है क्या वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, कि हे महाराज युधिष्ठिर मैं वंचित हो गया हूं हरिणा बंधु रूपिणा, साक्षात श्री हरि मेरे बंधु के रूप में थे, सदैव मेरे साथ में रहते थे, प्रत्येक क्षण वो मेरे साथ में थे और उनकी उपस्थिति का प्रभाव था कुछ मेरे जीवन में। क्या प्रभाव था कि मैंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया, द्रोणाचार्य के द्वारा जो धनुर्विद्या में मैं सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ, कौरवों को मैंने परास्त किया, ऐसे देवताओं को भी परास्त किया, यहां तक कि महादेव भी परास्त हो गए थे। किस प्रभाव से? तो वहां पर वे श्री कृष्ण का अनुग्रह मुझ पर था। जब भगवान और साधु वैष्णव गुरु का अनुग्रह जब होता है, उसका ही परिणाम होता है कि हमारे द्वारा कुछ शक्ति प्रकट हो जाती है, कुछ भक्ति का अभ्यास हो जाता है, और उसको जैसे निकाल लिया जाए तो जैसे अर्जुन निस्तेज हो गया वास्तविक हमारी अवस्था भी वैसी रहती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद वहां कहते हैं कि किंचित मात्र भी गर्व नहीं होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि वास्तविक देखा जाए कलयुग के जो जीव है उनका कोई ऐसा सुकृत नहीं है, कोई ऐसा विशेष योग्यता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त इस प्रेम संकीर्तन को, इस माधुर्य भक्ति को प्राप्त कर सके। ठीक है, मैं श्लोक तो छूट गया, मैं कहां से कहां चला गया, कहां थे हम? हाँ हो गया, हा? क्या हुआ? मैं बोलने वाला था इस पर ऐसे स्वधिष्ण नाम एक देश मनसा प्राण धारणम, और फिर वो वैकुंठ लीला शब्द भी दिखा तो उस पर भी विचार था, मन पर विचार था, वो दो शब्द छूट गए और कुछ और ही विषय आ गया। तो यहां पर क्रमशः अलग अलग जो अंग बतलाए गए हैं कि संसार से मन को क्रमशः निकाल कर जब भगवत मार्ग में निवृत्त किया जाता है फिर हम उस शब्द पर आत्मवित चरण अर्चनम मित मेथा ध्यानम शश्वत वित्त क्षेम सेवनम, इस शब्दों पर चर्चा किए थे। आत्मवित चरण अर्चनम, जो आत्म साक्षात्कार किए हैं, भगवत अनुभूति किए हैं, जो रस को प्राप्त किए हैं, भगवत भक्ति के रस को प्राप्त किए, ऐसे भक्तों के चरणों का आराधना, जिसको श्री कृष्ण गीता में कहे आचार्योपासनम कहा गया है, या श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण उद्धव से कहे मद भक्त पूजयाभ्यादिकः, तो वहां करके फिर अपने आहार को संयमित करके विविक्त क्षेम सेवनम, इस शब्द पर लगभग पिछले बार मैं कहना चाहता था छूट गया था, विविक्त क्षेम सेवनम, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहे 13वें अध्याय में ना और 16वें अध्याय में विविक्त सेवी, 16 की 17वें अध्याय में विविक्त सेवी आता है शब्द, और 13वें अध्याय में भी क्या वो अरति जन संसदी कि मतलब बहुत महत्वपूर्ण है जो भगवान प्रसन्नता पूर्वक भगवान की भक्ति करना चाहता है, मन को पूर्ण एकाग्र करना चाहता है कि भक्ति मार्ग के लिए अनुकूल स्थान का चयन, जब तक स्थान, इसीलिए गुरु का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है नारद मुनि जब ध्रुव की परीक्षा लिए है, विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क दिए, तो गुरु भी अच्छी तरह से पहले परीक्षण करता है कि साधक साधन को करने के लिए सक्षम है, अधिकारी है कि नहीं। तो नारद मुनि काफी प्रश्न पूछे, तुम्हारी योग्यता नहीं है, तुम्हारी उम्र नहीं है, और भक्ति मार्ग जो है अत्यंत कठिन है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके भी उन भगवान की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार के तर्क, जिसे कह सकते कि जब हम भक्ति करते तो अपने मन में जब संशय कुछ आ जाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है भगवान को प्राप्त करना है, ये उम्र है क्या भक्ति करने की, ऐसे कई प्रकार के तर्क आते हैं, वैसे तर्क ही ये जिसे वितर्क कह सकते हैं, उन वितर्कों को नारद मुनि प्रस्तुत किए। परंतु समस्त वितर्कों के बावजूद जब ध्रुव की उस ध्रुव निष्ठा को देखा भगवत प्राप्ति की, तब ध्रुव नारद मुनि प्रसन्न हुए। नारद मुनि कहा कि वास्तविक तुम्हारे माने जो मार्ग बताया वह सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, कि भगवत मार्ग में जो तुम चले हो ये गलत नहीं है, और किस तरह से इस मार्ग में सिद्धि प्राप्त होंगी। तो फिर वहां पर भक्ति के उपदेश दिए, तो प्रारंभ भी वहां पर कहते किस तरह, पहला श्लोक है तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाय तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, वहां से प्रारंभ हुआ है। तत्तात गच्छ भद्रम ते, सर्वप्रथम भक्ति का प्रारंभ कहां होता है, जब गुरु के मुख से यह वचन निकले भद्रम ते, तत्तात गच्छ भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, इस तरह का ऐसा हमारा समर्पण हो कि गुरु के मुख से यह वचन निकल जाए। साधु जब के मन में जब किसी एक जीव के लिए शुभ संकल्प आता है, वह शुभ संकल्प, एक साधु के हृदय का शुभ संकल्प ही किसी भी जीव को भगवत मार्ग में सिद्धि प्रदान करने का सबसे प्रमुख साधन है। यह श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद का यह पट्टिका श्रीधर स्वामी लिखे, वहां पर भी जब दो शब्दों की उन्होंने व्याख्या की, महत कोप और महत कृपा। महत कोप और महत कृपा का परिणाम क्या होता है? महत कोप जो होता है मतलब साधु का कोप, भगवान के धाम में जो स्थित है वो सबसे निकृष्ट योनि को प्राप्त कर जाता है। जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। परंतु महत कृपा जब हो जाए तो सबसे निम्न योनि में जो है वो सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। उसका दृष्टांत है प्रहलाद। महत कोप का दृष्टांत दिया गया हिरण्यकशिपु और महत कृपा का दृष्टांत है प्रहलाद। एक ही परिवार में दो है। सबसे ऊंचा बैठा हुआ व्यक्ति सबसे नीचे पहुंच जाता है जब जीवन में किसी साधु की अवज्ञा हो जाए, परंतु वहीं किसी कृपा हो जाए, जैसे श्रीपाद रामानुचार्य का भी जो प्रसंग है उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया, रामानुचार्य की जो अंतिम कामना थी, रामानुचार्य के सभी शिष्याएं जब समाधि लेने वाले थे तो उसी क्षण समस्त शिष्याएं उन्होंने प्रणाम की, वंदना की और कहा कि आपके हे गुरु महाराज आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा कि श्री भाष्य जिसे कहा जाता है, श्रीपाद रामानुचार्य ने वेदांत के ऊपर जो टीका लिखी है उसे श्री भाष्य कहा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा प्रत्येक शिष्य श्री भाष्य का अच्छी तरह से अध्ययन करे। समस्त शिष्यों ने जब सुना तो सबके मन थोड़े खिन्न हो गए, क्योंकि श्री भाष्य पूर्ण रूप से संस्कृत में है और सभी उतने विद्वान नहीं थे कि संस्कृत समझ सके। क्या किया जाए? रामानुचार्य ने सबके मुख को देखा कि सब निराश दिख रहे थे, तुरंत कहे कि फिर ठीक है, ऐसा कीजिए कम से कम समस्त अलवारों के द्वारा जो भगवत स्तुति लिखी गई है उनका पाठ किया जाए। लगभग कितने 11 अलवार है, 11 अलवारों के स्तुतियों को दक्षिण भारत में जो प्रमुख, जैसे हमारे महाराष्ट्र में तुकाराम नामदेव आदि संत हुए, वैसे दक्षिण भारत में कुछ प्रमुख संत हैं जो भगवान की विशिष्ट शक्तियों के अवतार हैं, भगवान के चक्र का अवतार, शंख के अवतार, ऐसे 11 अलवार के रूप में प्रकट हुए दक्षिण भारत में। और उन्होंने बहुत सुंदर अलग अलग भाषाओं में जो लिखा है, जो स्थानिक भाषा के तेलुगु तमिल आदि में जो लिखा गया, कन्नड़ में, तो उन स्तुतियों का पाठ नियमित रूप से किया जाए। तो कई फिर भक्त थे वे फिर से निराश हो गए, इतना कौन कर पाएगा? कलयुग का लक्षण था, कलयुग में हमेशा शॉर्टकट चाहिए, इतना कहाँ होगा प्रभु जी, हमसे थोड़ा चाहिए, कम से कम जो दिया जाए। फिर तीसरा उन्होंने कहा था कि कम से कम जीवन में एक वर्ष कहा जाता है, एक वर्ष के लिए तिरुपति में आके भगवान बालाजी की जो नित्य सेवा है वह एक वर्ष तक कम से कम की जाए। कई शिष्य थे वे तैयार हो गए, परंतु कई उसमें गृहस्थ थे शिष्य, तो उन्होंने विचार किया कि यह भी कैसे संभव, एक साल तक कैसे हम BSNL से आपको छुट्टी लेने के लिए कहा जाए, पूरी छुट्टी हो जाएंगी फिर तो, एक वर्ष जाना संभव नहीं। ऐसे 3-4 पर या चौथा मुझे ये स्मरण था, किसी याद है पिछला शायद कहा था मैंने। और सभी जितने भी वो पर्याय दे रहे थे कि ये अंतिम इच्छा, ये सभी मैं चाहता हूँ सभी मेरे शिष्य करे, ये अंतिम इच्छा मैं चाहता हूँ सभी मेरे शिष्य करे, परंतु सब करने में असफल हुए। तब अंततः उन्होंने कहा कि एक कार्य किया जाए, अपने जीवन में एक कोई साधु और वैष्णव का आश्रय लिया जाए, पूर्ण श्रद्धा के साथ एक साधु आश्रय मतलब पूर्णतः समर्पित अपने आप को किया जाए, और पूर्ण जिसको क्या कहा जाए अंग्रेजी में कहते हैं विदाउट एनी रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब क्या है? रिजर्वेशन टिकट मतलब बिना किसी अपने मन के संकल्प के पूर्ण रूप से उसे जब समर्पित होते एक साधु गुरु को, और हृदय से जब उसकी पूर्ण सेवा की जाती है, उसके समस्त वचनों का पालन किया जाए, उसके आदेशों का पालन किया जाता है, और इतना अधिक उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं कि उसके वचनों को कहने के पहले ही समझने लगते हैं, जिसका कहते हैं प्रथम श्रेणी का शिष्य कौन होता है, जो गुरु के हृदय को पकड़ने लगता है, मन की भावना को, साधु के प्रति इतना समर्पण आ जाए, इतना समर्पण आ जाए, जैसे अब हारमोनियम बजाते हैं तो हारमोनियम हमारे कुछ भक्त सीखना चाहते थे तो हारमोनियम में एक विशेष होता है कि सुरीला हारमोनियम किसे ये कहा जाता है, जो प्रथम स्वर के साथ सभी स्वर जब मिलते हैं सारे ग म प ध नि सा, तो सात स्वर महत्वपूर्ण होता है। आप जो भी सप्तक है, मंद्र सप्तक, अलग अलग सप्तक होते हैं उसमें हारमोनियम में, तो जो भी सप्तक आपने जो भी स्केल पकड़ी उसमें जो सा आपने बोला है सभी स्वर उसके साथ मिलने चाहिए, तो उसको सुरीला कहा जाता है। और जो हारमोनियम बजाने वाले तुरंत समझ लेते हैं सा के साथ रे मिल नहीं रहा है, रे का आवाज अलग ही निकल रहा है, फिर ग का आवाज अलग निकल रहा है, और हर एक अपना अपना सुर निकाल रहे, तो उसको बेसुरा हारमोनियम कहा गया। जब सुरीला हारमोनियम मतलब सा के साथ जब मिलते तो इसको कहते फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है अंग्रेजी में। जैसे उसमें भी सा और प होता है ना, जो तार होता है जो गिटार में भी, तो सा के साथ प मिल रहा है कि नहीं वो चेक किया जाता है, तो उधर ट्यून हो गया। जब तक वो प मिलता नहीं है सा से तब तो उधर ट्यून नहीं है। तो हमारा जीवन जब किसी साधु के साथ पूरी तरह ट्यून हो जाता है, मतलब ट्यून मतलब जैसे ना रेडियो में भी ट्यूनिंग की जाती है, आप पता है ट्यूनिंग एक लगभग 20 साल पहले में हमारे घर में था, इतना बड़ा रेडियो आता था, उसमें एक बटन मिलता ट्यूनिंग वाला। ट्यूनिंग मतलब वो चैनल मिलाना पड़ता है, जब तक चैनल मिलता नहीं घर 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 आवाज होती रहती है। तो हमारे जीवन में घर घर होते रहते हैं जब तक हमारा चैनल मिल ना जाए। तो गुरु साधु चैनल से जब हमारे चैनल मिलने लगे, पकड़ने लगते जब उसके विचारों को, इतना उसमें समर्पण हो जाता है, इतना उनके वचन के साथ एक हो जाते हैं कि उसके मन के विचारों को पकड़ने लगते हैं, और मन के विचारों को पकड़ कर वो कहने के पहले ही उन कार्यों को करने लगते हैं। तो रामानुचार्य कहे कि ऐसा जब आप समर्पण साधु किसी एक साधु में श्रद्धा के साथ आप समर्पण के साथ ऐसी सेवा करने लगते तो क्या होता है, वो साधु का हृदय प्रसन्न हो जाता है। बिना बोले देखो प्रभु जी पानी लेकर आ गए, ऐसा मतलब अभी तो पानी की जरूरत नहीं है, ऐसे आज एकादशी पानी का स्मरण लगे, तो बिना कहे उसके जब आप कार्य करते तो उसके हृदय प्रसन्न हो जाता है। और हृदय जैसे प्रसन्न होता है तो कहा जाता है तुरंत उसके हृदय में एक शुभ संकल्प आता है, गॉड ब्लेस हिम जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कहा जाता है, भगवान की कृपा इस पर हो, सहज मन में उसके प्रति कुछ शुभ संकल्प आने लगता है, इसको कहा जाता है आशीर्वाद प्राप्त करना। ऐसे नहीं जबरदस्ती कोई किसी को पिछड़ा प्रभु जी कृपा कीजिए कृपा कीजिए कृपा कीजिए, ऐसे कोई जबरदस्ती थोड़ी कोई कृपा मिलती है, कृपा प्राप्त होती है इस प्रकार के जब समर्पण होता है साधु गुरु। और ऐसा जब समर्पण हो, किसने हम शुरू हुई थे विषय कौन सा चल रहा था अभी तक कहाँ थे हम, रामानुचरित कथा क्यों गए थे, हाँ तो कृपा में साधु कृपा में क्यों गए थे, उसके पहले क्या विषय था, अच्छा ठीक है विविक्त शेम सेवनम ये शब्द पे चल रहा था मैं कि नारद मुनि प्रसन्न हुए ना तत्तात गच्छ भद्रम थे, इससे शुभ संकल्प इस शब्द पे मैं गया था कि नारद मुनि इतने प्रसन्न हो गए कल्याण हो तुम्हारा, तो भक्ति का शुभारंभ हो जाता है जब कोई साधु आपके लिए शुभ संकल्प लेने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि यमुनाया तटम शुचि कि एक पवित्र स्थान का चयन किया जाए, पवित्र स्थान जो मन को विक्षेप न दे, मन तुरंत श्री कृष्ण में सहजता से लगे, ये बहुत आवश्यक है सही स्थान। तो विविक्त का एक सरल अर्थ तो ये हो गया, विविक्त मतलब एकांत में चला जाए, ये कई जगह लिखा है, परंतु वास्तविक एक अंत शब्द का बहुत व्याख्या की गई, एक मतलब ऐसे कहा जाए श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही जिसका अंत हो जाए, मन श्री कृष्ण में सहज जहां लगने लगे उसे एकांतिक स्थान कहा जाता है। एकांतिक मतलब केवल जंगल नहीं होता है, एकांतिक मतलब एक कमरे के अंदर आप अपने आप को बंद कर दिए वही एकांतिक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप एक कमरे के अंदर बंद हो परंतु आप संसार आपके मन में घुसा हुआ है पूरा, तो उसको एकांत नहीं कहा जाता है। वास्तविक एकांत जो है जब सहज मन एकाग्र श्री कृष्ण में होने लगे जिस स्थान पर, तो वह गुरु प्रदत्त स्थान होता है। या इसको शिल प्रभुपाद परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जब कह रहे थे, वो पत्र है भी, तो उसमें महाराज शिल प्रभुपाद कहे कि महाराष्ट्र इज योर प्रभु दत्त देश, शिल प्रभुपाद महाराष्ट्र को कहे, तो महाराज बार बार स्मरण दिलाते थे इस बात को, हम जो पंडरपुर में रहते थे कि शिल प्रभुपाद ने प्रभु दत्त देश दिया, प्रभु दत्त मतलब सेवा के लिए एक गुरु स्थान नियुक्त करते हैं, और उस स्थान पर जैसे आप जो भजन साधन करते हैं वो साधन तुरंत कई गुना फलीभूत होने लगते हैं। परंतु यदि गुरु कृपा से प्रदत्त जो स्थान न हो वहां पर आप जैसे साधन करें तो फल नहीं लाता है वह। तो विविक्त क्षेम का एक अर्थ यहां पर बतलाए, तो ऐसे अलग अलग यहां पर अंग बतलाए गए। तो अब हमारे श्री गोविंद प्रभु जी का आग्रह कि इसको कल ही किया जाए, बहुत ज्यादा समय हाँ कल ही करें, क्षमा चाहता हूँ, ओवरली स्पॉन्टेनियस हो गया कुछ। मुझे तुरंत अभी आज सुबह सुबह ही हमारे सचिव प्राण पुरुष स्मरण दिलाए थे कि